गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मनीय श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज पूज्यपाद श्री अखंडानंद जी महाराज और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। कृष्ण कहते हैं अब मैं गोपनीय बात तुम्हें कह सकता हूं। अब मैं गोपनीय बात कह सकता हूं, ये कृष्ण की मन की जो स्थिति है, स्थिति का एक कारण है कि 8 अध्याय पर्यंत कृष्ण है वो तर्क करते रहे, क्योंकि अर्जुन केवल तर्क कर रहा था। प्रश्न दो ढंग से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछने का अर्थ यह होता है कि हम कुछ जानना चाहते हैं, हृदय में उद्विग्नता से नहीं किंतु भाव से, कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ उत्कर्ष के लिए, कुछ अभ्युदय के लिए, कुछ उत्थान के लिए, आत्मानुभूति के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, ईश्वर अनुग्रह के लिए एक प्रश्न है। एक प्रश्न होता है कि मैं तो जानता हूं तुम क्या कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात को काटना चाहता हूं। लोग बात प्रश्न पूछते हैं हमें, समझिए बताएंगे कि श्रवण के माता पिता का नाम क्या था। हम बोलते हैं तुम कभी अपने माता पिता को प्रणाम किए क्या? Why you are asking such silly questions? ये अपनी माता पिता को जिसने कभी प्रणाम नहीं किया वो श्रवण के माता पिता के नाम को जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? एक प्रश्न पूछने का एक अभ्यास हो गया, कहीं बैठो कुछ पूछते रहो। समाज में 4 तरह के लोग होते हैं, आश्रम में आने वाले भी लोग ऐसे ही होते। एक तो होते वेगा बॉन्ड, कुछ हो रहा है चलो चक्कर मार के आ जाए। दूसरे होते हैं कुछ जानने के लिए, वो आश्रम है क्या क्या प्रवृत्ति चलती है। किंतु तीसरे होते हैं बौद्धिक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, PhD किए हुए होते हैं और जानना चाहते हैं एक जिज्ञासा को लेकर के, जिजीविषा को लेकर के, जिज्ञासा को लेकर के। किंतु चौथे होते हैं विद्या वेरी रेयर, जिसे हम कहते हैं मनुष्याणाम कश्चित सहस्रेषु, जो हजारों में एक, जो आत्मा की चाह को लेकर के आते हैं। अर्जुन की चाह अब तक केवल अपने आप को टालने की थी, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। अपने मन में एक शंका नहीं किंतु एक उद्विग्नता लिए बैठा हुआ था, ये मैं क्यों करूं क्या करूं, इसलिए बुद्धि से तर्क कर रहा था। जब तक बुद्धि के द्वार को खटखटाओगे हमेशा क्लेश ही मिलेगा, क्योंकि बुद्धि है उस पर नियंत्रण हमारा नहीं है, बुद्धि स्वयं सारथी है। बुद्धि पर नियंत्रण करने के लिए आत्मा के माध्यम से ही बुद्धि पर नियंत्रण हो सकता है। कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें गोपनीय बात कह सकूंगा, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्षामि अनसुय, कहूंगा अनसुय क्योंकि तुम निष्कपट हो, तुम्हारी दृष्टि में दोष नहीं है। और ये क्या कहा? ज्ञान विज्ञानम सहितम, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञानम और विज्ञानम। द ज्ञान होता है, हम समझते हैं कि ज्ञान जो होता है जो यूनिवर्सिटी पढ़ लेते हैं वो ज्ञान ही होते नहीं, होते हैं वो लोग, उनको बोलते हैं भारत सवेत्ता न तो चंदनस्य, वो भार को ढोते हैं चंदन को नहीं ढोते। भगवान भाष्यकर आदि शंकराचार्य जी की महाराज की सभा में यह पूछा गया था, ज्ञानी कौन है? जो सत्व को जानते हैं, जो तत्व को जानते हैं। सत्व तत्व को जान करके आत्मा के लक्ष्य के प्रति जीवन को प्रतिपल यापन करते हैं। जिनको वेदों का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, ब्रह्मसूत्र का ज्ञान है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और आचरण भी करते हैं। आचार प्रभव धर्म, ये हमारे विष्णु सहस्राम ने कहा, आचरण भी करते हैं। यद मनसि तत् वचसि तत् कर्मणि, जो मन में है वही बोलते वही करते, भिन्न भिन्न नहीं है। तो ज्ञानी है। फिर अज्ञानी कौन है? अरे वो जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बोलते हैं किंतु करते अलग है, व्यवहार अलग है। गुजराती में क्या कहते हो? पोथी माना रेंगणा। कथा में जो कुछ कहा गया वो कथा के लिए है, मेरे अपने जीवन के आचरण के लिए नहीं है। तो वो तो है अज्ञानी है। तो मूढ़ कौन है? तो मूड तो वो है सब कुछ जानते हुए सब कुछ उल्टा करते हैं। अज्ञानी किसको कहा? अज्ञानी कहा कि जो शास्त्र पढ़ा ही नहीं, शास्त्र का कखग नहीं जानता है, वो तो अज्ञानी। मूड कौन है? सब कुछ जानते हुए कुछ उल्टा करता है, वो मूड है। अर्जुन की अवस्था अलग है। अर्जुन का नाम ही होता है ऋजु, सरल। झुंझुनवाला साहब कहते हैं, स्वामी जी आप बहुत सरल हैं। अरे सरलता ना हो तो साधु के क्या महाराज? सरल हो तब तो साधु है। कल कोई हमसे पूछ रहा था साधु कैसे चाहिए, अरे पड़ोसी का बच्चा हमारे आंगन में खेलने आ जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं? कोई साधु हमारे घर में आ जाए तो बोझ नहीं महसूस होना चाहिए। आ गया तो जैसे बच्चा खेलने आता है कितना आनंद होता है, वैसे साधु होना चाहिए। जिसके जीवन में सरलता ही नहीं वो साधुता क्या वही है। दृष्टि में दोष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, शुद्ध ब्रह्म। एक केवल जिसका चिंतन करते हो उसी के जीवन के यापन करो। अर्जुन रुझु है, सरल है, अपने दिल की बात जैसी की तैसी कह देता है। कहते हैं महाराज अब मैं तुम्हें कहूंगा क्यों। 8 अध्यायों की एक भूमिका करने के बाद में कृष्ण अब श्रद्धा के सूत्र पर विचार करना चाहते हैं। क्या कहा कि श्रद्धा है ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य सुभात। कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुकुम कर्तुमर्थमम। बहुत सुंदर बात कही, देखिए ध्यान दे। अश्रद्धानाम पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। ये 3 मंत्र समझ लीजिए आप, एक बार बोलेंगे इनको भी। चलिए इदं तु ओम श्री भगवान उवाच। ओम श्री भगवान इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राज विद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि मृत्यु संसार वर्त्मनि। इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते ते तुझ अनसूयवे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए। ध्यान दे भक्त के लिए कहा। हमने कल चिंता की थी कि भक्त क्या है, वो सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, जो विभक्त नहीं है वह भक्त है। इदम इस गुह्यतमम परम गोपनीय ज्ञानम ज्ञान को विज्ञान सहितम रहस्य के सहित प्रवक्ष्यामि कहूंगा तो कि यत जिसको ज्ञात्वा जानकर तुम। देखिए ध्यान दे फिर से, जानकर सुनकर नहीं है। अशुभात दुख रूप संसार से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। अब क्या कहा? राज विद्या, जो विद्या असाधारण विद्या है ये तो राज विद्या है। क्या कहा है कि इदम यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, असाधारण है। राजगुह्यम तमाम गोपनीयों में भी गोपनीय है, पवित्र मति पवित्र उत्तम है, प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्ष फल देने वाला है। वो क्या बोलते हैं? चट मंगनी पट्टा। ये पहले तो इडली के लिए वो भिगोना पड़ता था, रात भर सवेरे पीसना पड़ता था तब जाकर के इडली होती थी। अभी तो रामदेव मसाला से, हाँ ढोकला है, खमन है, कुछ नहीं, गुलाब जामुन सीधा कदम। वो ऐसा कहा प्रत्यक्ष एकदम से। धर्म्यम धर्मयुक्त है, ये बहुत जरूरी बात है। तुरंत फल देने वाला किंतु अधर्म से नहीं है, धर्म से है। सुसुखम बड़ा सुगम है, ये सुगम शब्द बहुत जरूरी बात है। सुगम है, अव्ययम अविनाशी है, सुगम है किंतु परमानेंट है, परेनियल है, टेम्पररी नहीं है। असद्दधान परंतप, परंतप हे परंतप हे अर्जुन, अस्य इस ज्ञान रूप धर्म से धर्म में अश्रद्धान श्रद्धा रहित पुरुषः पुरुष माम मेरे को मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर मृत्यु संसार वर्तमनी निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनी वो कहते हैं मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। दो बात कही थी स्पष्ट, श्रद्धा रखो, नहीं श्रद्धा रहने से आपका आवागमन बना रहेगा। कौन सा आवागमन है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। ये चक्र क्यों होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि? क्योंकि हमारे चित्त में संदेह भरा हुआ है। आदरणीय नरेश भाई ने बड़ी सुंदर व्याख्या की थी मन और चित्त के भेद बताने के लिए। मन है वह चित्त नहीं है, चित्त है वह मन नहीं है, विविध रूप से है, इनकी प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न है। चित्त में जब तक संदेह रहता है, एक बात समझ लीजिए, कोरे घड़े में एक बार केरोसिन डाल लो फिर निकाल लो। अब जब तक केरोसिन की खुशबू है उसमें, उसमें देसी घी नहीं डाल सकते, उसको साफ करना पड़ेगा, वो तो नहीं जाएगा। येन केन प्रकार है ना, उसकी पुरानी जो सुगंध है या दुर्गंध है या बदबू है, उसको जब तक उससे मुक्ति नहीं होगी, उसको स्वच्छ करना पड़ेगा, संदेह से मुक्ति करनी पड़ेगी। संशय आत्मा विनश्यति, हम संदेह लेकर के चलते हैं, जितना संदेह करते हैं उतना ही हमारे भीतर में दुख। एक श्रद्धा चाहिए, एक विश्वास चाहिए, जो कह रहे वो करिष्य वचनम तव, जब अर्जुन कहते यहां क्या कहा, चित्त में संदेह क्षुद्र बात है। जब चित्त में संदेह हो तो क्षुद्र बात की जा सकती है, संदेह नहीं हो तो गंभीर बात कही जा सकती है। अर्जुन अब तुम्हारी दृष्टि में दोष नहीं है, संदेह नहीं है। गहन बात करें तो आत्मीयता चाहिए। एक दो बात समझ लेना बात में, एक तो लोग बुद्धि से बात करते हैं, ये जो अखबार वाले लोग होते हैं ना, एक दूसरे को काटते रहते हैं, किंतु जब भाव बढ़ाना है कुछ मामला है तो सब एक टेबल में जमा होते हैं, अर्धी अर्धी चाय, इतना प्यार से बात करते हैं जैसे कि ये बड़े पुराने सगे यार भाइयों, बाहर गए तो फिर काटेंगे। ये बौद्धिक है, ये हार्दिक नहीं है। जब शादियों का निमंत्रण होता है किसके बोलते हैं, हार्दिक निमंत्रण छे, वो बौद्धिक निमंत्रण नहीं बोलते, दिल से बुलाया है, ये दिल से बुलाना है, हृदय से बुलाना है, क्योंकि हृदय एक निष्कपट है, हृदय जो अशुद्ध रक्त ले लेता है, शुद्ध रक्त देता है और अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, वो निष्कपट है, निष्पाप है, तब तो हृदय है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि में चंचल सा। कल क्या कहा, आत्मा तम गिरिजा मति ही, दोनों में बहुत भेद है, पूर्व पश्चिम का है। बुद्धि है वो ऊपर ऊपर बैठती है, अहम से बड़ी हुई है, पंजाबी में बोलते हैं मथा टेक, मथा टेक का मैंने क्या होता है, कीप योर ईगो डाउन, तुम्हारा सिर को नीचे रखो, अहंकार को नीचे रखो। रहस्यपूर्ण बात, कृष्ण प्रसन्न है, अभी कृष्ण सूत्र कहते हैं आठ अध्यायों में निरंतर अर्जुन ने बुद्धि से तर्क किया है आठ अध्यायों में, और कृष्ण भी बुद्धि से बात करते रहे, किंतु बुद्धि जब तक काम करती है हृदय विश्राम करता है, और हृदय जब काम करता है तो बुद्धि विश्राम करती है, दोनों को साथ लेकर नहीं जाना है, बुद्धि को हृदय में मिलाना है। हमारे यहां तीन तत्व होते हैं, एक सत्व है, एक रजस है, एक तमस है। तमस को तो रास करना ही पड़ेगा, और सत्व को क्या हमारा रजस है, रजस को सत्व में मिलाना पड़ेगा। तो ऊपर से बुद्धि है उसको क्या कहा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपचिन्ते। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में जोड़ने के लिए कहा है, आत्मा को मन में जोड़ने के लिए नहीं कहा है। बुद्धि को हृदय तक लाना है, हृदय को बुद्धि तक नहीं लाना है। हालांकि हृदय ही खून भेजता रहता है आपके सेरिब्रम को, सेरिबेलम को, पिट्यूटरी को, पीनियल को, किंतु यह अत्यंत बात क्या कहा, हृदय सक्रिय हो जाना। अगर दो व्यक्ति बैठे, हमने क्या कहा कि एक है सामीप्य है, सामीप्य कब होगा, जब दिल से मिलते हैं तब, हृदय से मिलते हैं तब। गले में हाथ डाल करके बैठने वाले लोग में भी सामीप्यता हो ये जरूरत नहीं है। ये दोनों सोचते रहते इसको कैसे काटा जाए। वो ध्यान देना हमारे अपने जीवन में और साधु समाज में भी क्या है, सर्वत्र। अगर हमारा ये रेमंड मूडी नाम के एक बहुत बड़े तत्वचिंतक रहे, उन्होंने कहा इस जगत में अगर किसी ने भी मुझको सबसे अधिक दुख दिया है तो मैंने अपने आप के द्वारा सबसे पहले मुझे ही मुझसे दुख हुआ है। हाँ, ये क्या कहा, गीता की बात जो है। हाँ, आपका शत्रु कौन है, आप ही है। आपका मित्र कौन है, आप ही है। और फिर कहा उसने दूसरा स्टेटमेंट, अगर मैंने कभी दुख नहीं दिया, मैं जान करके जागृति पूर्वक नहीं किया, तो मेरे अपने लोगों ने मुझे दुख दिया है। जो आपके अत्यंत निकट है, अत्यंत समीप है, यही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। इसी जागृत क्या करना, जो समीपता है वो कैसे आ सकती है, अंतरंगता कैसे आ सकती है, वो जब तक हम हृदय नहीं देंगे तब तक समीपता नहीं आ सकती। जो सवाल हृदय से आते हैं ना, उसमें फिर संदेह नहीं होता है, बुद्धि में संदेह होता है। जो हृदय से आता है वहां सरलता होती है, वहां सहजता होती है, वहां निष्कपटता होती है, वहां निष्पापता होती है। वही भक्त के गुण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां महित्र करुणेवच निर्ममोह निरहंकार समह दुख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि ओ मत भक्त समय मई अर्पित मन बुद्धि। मन बुद्धि दोनों के लिए देने के लिए कहा है। मन बुद्धि तुम देओ, अपने पास तो हृदय रखना, मन बुद्धि मुझे दे दो। हम मन बुद्धि नहीं दे पाते, दो रुपया, पांच रुपया, आठ रुपया, सौ रुपया, हजार रुपया, फूल की माला और चार एप्पल ये दे देते हैं। ये देना सरल है नाथ, हृदय दो, दिल को बिछाओ परमात्मा के आंगन में। सवाल जब हृदय से आएगा तब वो सत्संग बन जाएगा। हृदय से आने वाला प्रश्न है वो सत्संग। सौन का अधिक ऋषि पुनः पुनः प्रश्न पूछते हैं सुत जी महाराज को। हमारे परीक्षित ने प्रश्न पूछा है हमारे सुखदेव जी महाराज को, महाराज मुझे बात के मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ एक साधक किसका चिंतन करे, किसका स्मरण करे, किसका जप करे, किसका ध्यान करे, मुझे कृपा। एक सवाल है, चार सवाल, एक नहीं है, किंतु परीक्षित का प्रश्न स्वयं परीक्षित के लिए होते हुए भी समग्र समाज के लिए है, क्योंकि मृत्यु न केवल परीक्षित को, परीक्षित को तो ध्यान था कि सात दिन के बाद में, हमें क्या पता है। जाता सही ध्रुव और मृत्यु, जो सांस है अंदर भीतर में आई बाहर जाएगी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। निश्वास एक विश्वास कदा रुद्धो भविष्य थे, हाथ में आया हुआ टुकड़ा है मुंह तक आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बहुत जरूरी बात है। इसलिए अपने प्रत्येक सांस में हृदय को आगे करने के लिए कोशिश करें, जो शुद्ध है, निष्कपट है, निष्पाप है, क्योंकि हृदय से आया हुआ हर प्रश्न है वह एक सत्संग हो सकता है। बुद्धि बुद्धि के बीच में आप सेतु नहीं कर सकते हो ना, किंतु हृदय हृदय के बीच में एक सेतु बन सकता है। आवागमन का मार्ग, हृदय की उर्मियों का मार्ग, हृदय के सद्भावना का मार्ग। अब अर्जुन का हृदय कृष्ण के ठीक सामने है, और इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं प्रवक्ष्यामि, मैं कहूंगा तुम्हें। जब भी संदेह हो, ध्यान देना, किसी भी आदमी का संदेह अगर आपके सामने आता है वो स्थिर नहीं बैठ पाएगा, थोड़ा थोड़ा हाथ पांव चलाता रहेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, उसकी भाव भंगिमा, उसकी उपस्थिति में जो चंचलता है वो संदेह को व्यक्त करती है। अभी परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज जी हैं, कितना बड़ा बताते हैं कि जब बारिश में जब पानी से गड्ढे भर जाते हैं और बाद में जब आंधी चले तो उन गड्ढों के पानी के ऊपर में धूल छा जाती है, तो जमीन की धूल और इस धूल में कोई भेद नहीं नजर आता है। दौड़ते दौड़ते लगे कि वो समझते कि एक ही जमीन है, वस्तु तो वह जमीन नहीं होती है, तो पानी में पांव गिर जाता है। ये बाह्य आवरण है, भीतर कुछ और है। ये जो असमंजसता है, ये जो दुविधा है हमारे जीवन की, वह भेद बुद्धि के कारण है। बाहर कुछ दिख रहा है, अंदर कुछ है। चैतन्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण शुद्धि, चैतन्य शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध स्वरूप है, वहां कोई निष्कपट नहीं, कोई कपट नहीं, वहां पर शुद्ध चाहिए, छल नहीं चाहिए। काम कोह मद मानन मोहा लोभन क्षोभन रागन दोहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसम रघुराया। अपने आप को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जिनके जीवन में संदेह, उनके आंख, उनके नाक, उनके कान, उनके शरीर, वो तमाम के बीच में संतुलन नहीं रहेगा, वो चंचलता रहेगी, क्योंकि वो संदेह से भरा हुआ है, छल से भरा हुआ है। उसकी आंखों को देखने से लगता है आंखें स्थिर नहीं है, इधर उधर भटकती है। शंका को, कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई पकड़ तो नहीं लेगा, मेरे मन का भाव है उसको कोई जान तो नहीं लेगा। और जिसको कपट नहीं है, छल नहीं है, वो स्वस्थ है। स्वस्थ बोलिए, एक बार बोलिए, स्वस्थ। स्वस्थ जो आत्मा में स्थिर है, उसमें संदेह नहीं है। स्वस्थ बने जिसका हाथ नहीं दुखता है, पांव नहीं दुखता है, सिर नहीं दुखता है, कमर में दर्द नहीं है, बीमारी नहीं है, वो सदा स्वस्थ होता है, वो निरोगी होता है, वो स्वस्थ नहीं होता है। स्व आत्मा में है, जो आत्मा में रहता है वो स्थिर है, उसको चंचलता नहीं, उसको संदेह नहीं है। शरीर का कण कण बदली हो जाता है जब संदेह हो जाए तो। अगर देखिए, ये एक बात है, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने 310 पुस्तक लिखे, उनमें एक पुस्तक भी है कॉन्क्वेस्ट ऑफ एंगर, क्रोध शमन। उसमें लिखा हुआ है कि एक महिला अपने बच्चे को ये दुग्ध पान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी। स्तनपान करते करते नवजात शिशु मर गए। डॉक्टर के पास लेकर के आई तो डॉक्टर ने कहा, इसको तो किसी ने झेर दिया है। झेर दिया है महाराज? किसी ने तो नहीं दिया, मेरे घर में कोई नहीं आया, मैं तो खुद उसको स्तनपान करा रही थी। तुम स्तनपान करा रही थी तो क्या कर रही थी? गुस्सा कर रही थी बहुत। तुम गुस्सा कर रही थी, गुस्सा करते करते स्तनपान कराने के समय में उस क्रोध के आवेश में तुम्हारा दूध है वो जहर बन गया था। आज का विज्ञान इसकी प्रतीति कर चुका है। जो व्यक्ति शांत है, उसका जो रक्त है, उसका आप वैज्ञानिक पृथक्करण करें, सल एनालिसिस करें, तो उसका जो कण कण है उसकी स्थिति और शांत मन और आक्रोश मन, इनकी स्थिति अलग अलग है, उनकी अनुभूति होती है। कभी कभी हमें आश्चर्य नहीं होगा यदि वैज्ञानिक लोग हैं, वो छल करने वाले के भी मन को अगर नहीं जानेंगे तो दूसरे 10-20 साल में लोग जान लेंगे कि ये छल से भरा है या कपट से भरा हुआ है। क्योंकि एक जो आजकल कितने सोफिस्टिकेटेड मशीन हो गए हैं, कि हमारा सूटकेस जो है वो स्क्रीनिंग में आता है ना, तो बोलता है, महाराज कितना लड्डू लेके जा रहे हो, थोड़ा हमको भी दो। अरे भाई, उसका लड्डू तुमको दिखता है क्या? सब दिखता है, सूटकेस में लड्डू रखा है, सूटकेस में कैसेट रखा है, बराबर देखता है वो, अगरबत्ती रखी है देखता है अगरबत्ती है। तो स्क्रीनिंग करते हुए इंसान को भी स्क्रीन करके पता कर लेंगे, ये संदेह से आया है कि ये भाव से आया है कि निसंदेह है, कि मानसिक स्थिति क्या है, वो मशीन अगर देख लेगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्यों कहते हैं कि हमारे पास में विज्ञान ने क्या कहा है, तोड़ जोड़ करके दोष दृष्टि क्या है। अभी परसों उत्तर प्रदेश में एक नवोदित युवक को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया गया। हजारों मन पुष्प आए थे उनकी ताजपोशी के लिए। दुर्भाग्य था कि कोई फूल उनके तक नहीं पहुंचा। कहलाने वाले उनके जो तमाम प्रेमी लोग थे, उन्होंने फूलों को तोड़ फाड़ दिया और उनको जमीन में डाल के कुचल के डाल दिया। आप एक फूल को, उसकी खुशबू को, पुष्प की सुगंध को, पुष्प की कमनीयता को, पुष्प के सौंदर्य को जानते हो तो उसको तोड़ करके नहीं जान सकते। हमारे यहां भारत में एक महिला आई थी, अमेरिका की, बड़ी विदुषी महिला थे, हेलन किलर उसका नाम था। दुर्भाग्य से उसकी नेत्र ज्योति बाहर के नेत्र नहीं रहे, स्थूल नेत्र नहीं रहे, वो अंतर चेतना को जानने वाली, वो अंतर्दृष्टि से देखने वाली थी। वो जब आई तो उसके हाथ में किसी एक बच्चे ने आकर के गुलाब का पुष्प दिया था। उस पुष्प को लेकर के वो बैठी रही, दो घंटे तक उसको ऐसे ही टटोलती रही थी। मीडिया तो आज का नहीं, मीडिया मीडिया ही होता है हमेशा, जो मीडियो कर, जो वस्तुतः नहीं, अंदर की गहराई को जाने के लिए, छानबीन करने के लिए, तोड़ने जोड़ने के लिए जो तैयार रहता है, यही मीडिया होता है। वो समाचार नहीं है, सम्यक आचार नहीं है वहां पर। वो मीडिया ने पूछा, दो घंटा हो गया बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं, ये फूल को क्या कर क्या रही हैं? हेलन किलर ने जो कहा था एक अद्भुत जवाब था, आंखों वाले नहीं देखते। उसने कहा, मैं ईश्वर की कोमलता का स्पर्श कर रही हूं। देखिए, ईश्वर की कोमलता का स्पर्श कर रही हूं। इस महिला को जब आगरा ताजमहल में ले जाया गया तो वो आंख से तो देखती नहीं, आप भी तो ताजमहल गए होंगे, ताजमहल गए होंगे, और एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा शायद, मुझे पता नहीं कब रुके कि नहीं। हम तो स्कूल में जब थे बच्चे तब गए थे, सब बच्चे गए फोटो खिंचा के आ गए थे, मुझे कुछ याद भी नहीं है। पांचवी क्लास में उसके बाद हम आगरा ताजमहल नहीं गए, किंतु इस हेलन किलर के बारे में हमने पढ़ा। वो हाथ से स्पर्श कर करके वो ताजमहल है उसको देख रही है हाथ से। तीन दिन चले गए, सुबह आती है शाम तक, ताजमहल के द्वार खुलने से आरंभ करके बंद होने तक उन दीवारों को छूकर छूकर दिख रहे। फिर मीडिया तंग आ गए, बोले मैडम क्या कर रही हैं? बोले संगमरमर में नक्काशी हुई कविताओं को पढ़ रही हूं मैंने। ध्यान दें कि उन संगमरमर में, उस आरस के अंदर में, उस मार्बल में पच्चीकारी की गई वो प्रेम के काव्य को मैं पढ़ रही हूं। हमारे पास में दृष्टि है क्या? हम दृष्टि वाले होते हुए भी कुछ नहीं देखते हैं। स्पर्श की अनुभूति क्या हमको नहीं है? शब्द भी है, स्पर्श भी है, किंतु हम फूल को आते हैं, वो हजारों मन पुष्प हैं, उनको पांव के नीचे दबा दिया गया, रौंद दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनको मसल दिया गया, उनको निष्प्राण कर दिया गया, उसकी चेतना ले ली गई। ताजपोशी में जाकर क्योंकि उसके मस्तक पर आना चाहिए था, हजारों करोड़ों लोगों के पांव के नीचे उनको मसल कर दिया गया। हमारे प्रश्न, हमारी आत्मा, हमारी चेतना दोष दृष्टि में ऐसे ही वस्तु विषय का प्राण हरण कर लेती है। हमें क्या चाहिए? अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो उस कोमल पुष्प है, उस कोमल पुष्प के सौंदर्य के भीतर जाना है, उसको तोड़ करके नहीं, उसके केवल स्पर्श से, उसको सुगंध करने की जरूरत नहीं है। सुगंध तो वो अपने नाक तक वो स्वयं पहुंचा देंगे। धन्य है इन तितलियों को, धन्य है इन हवा के रुखों को कि जिनकी वजह से ये सुगंध है, वो दिव्यता, भव्यता, ईश्वर की कमनीयता हमारे तक पहुंच जाती। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम हो जाएगा। कब सुगम हो जाएगा? अगर वो पहले आठ अध्याय पढ़ ले तब हो जाएगा। तो जरूरी बात है इस वस्तु विषय को जानना। कल हमने इस बात का चिंतन किया था, हम किसी भी मंदिर के ऊपर कलश तब तक नहीं रख सकते कि जब तक मंदिर स्वयं तैयार ना हो जाए। ये राज विद्या राज को ये योग है, ऊपर एक स्वर्ण का कलश रखने के माफिक है। स्वर्ण का कलश कब रखो? जो मंदिर का निर्माण तो हो, मंदिर का निर्माण हो जाए, ऊपर ध्वज लगने का है, ध्वज आरोहण करने के लिए मंदिर का शिखर होना जरूरी है। आठ अध्याय में दिव्यता की गहन चरम परिसीमा आई है। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। ये ब्रह्म क्या है, ये कर्म क्या है, ये ब्रह्म का स्वरूप क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये तमाम एक अट्टालिका को खड़ा किया है। ओम भू, ओम भू, ओम स्व, ओम ओम जन, ओम तप, ओम सत्य, ये आठ एक के पीछे एक सात अट्टालिकाएं चली गई, आठ अध्याय तब जाकर के इसके ऊपर में। किंतु दुर्भाग्य है कि हम लोग बहुत कमजोर हो गए, हम अपने भीतर में नहीं जाना चाहते। कल हम आपसे कह रहे थे जेल में प्रवचन करने गए साबरमती में, तो हम कहते रहे उनसे आप लोग बाहर तो नहीं जा सकते हो, ना आपको बाहर जाने की अनुमति है, किंतु आप भीतर तो जा सकते हो, भीतर जाने से आपको कोई रोक तो नहीं सकता है। भीतर जाने के लिए प्रयत्न करें, अपने आप को कमजोर ना करें, अपने आप को सीमित ना करें, मुक्त करें। आनो भद्रा करते वो संत विश्वतः, चारों ओर से अच्छे विचारों को हृदय में लाएं, तब दोष दृष्टि हटेगी। इफ यू रेस्ट यू विल रस्ट, बंद हो जाओगे तो बंद हो जाओगे, बंद नहीं होना, मुक्ति में रहना, तमाम अच्छे विचारों को सुनना, अच्छे लोगों से मिलना। महर्षि पतंजलि ने तो यही कहा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ना सुख दुख पुण्य पुण्य। अच्छे लोगों की मैत्री कीजिए, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा दिखाइए, सुखी है विद्वान है उनकी सराहना कीजिए, दुष्ट दृष्टि नहीं। आपके निकट के किसी पड़ोसी के यहां बहुत बड़ी कार आई है, कोई हो सकती इम्पाला हो सकती है कि मर्सिडीज भी हो, देखकर खुशी हो ना, अरे रहने दो यार सब ठीक है, जानते हैं हमने 28 साल से यहां रहते हैं, चोर के चोर आए थे तब एक साइकिल पे नहीं थी चलाने के लिए, अब देखो अरे वो 28 साल तक ये संघर्ष करता रहा है, एक रुपए में एक पैसा मुनाफा करता रहा है, सेठ बारदान वाला नाम कैसे हो गया, बारदान वाला रस्ते में पुराने बारदानों को बेचने वाला था, वो सूरत के अंदर में एक इंसान था जो दातून खरीदता था, हर घर में जाकर के एक दातून फ्री में देके आता था रोज सवेरे, अब धीरे धीरे करके वो सेठ लाकड़ा वाला हो गया। उसने संघर्ष किया है, उसने अपनी अट्टालिका का निर्माण ओवरनाइट नहीं किया है, वो एक एक पैसे को मोहताज था, इधर से उधर से रोटियां मांग करके कुत्तों को गायों को बिल्ली को भूखों खिलाता था, अब वो अन्नदान करने वाला अंडा बाबा बन गया, अन्नदान बाबा बन गया। तो उसके संघर्ष को आप नहीं देख पाते क्योंकि दोष की दृष्टि भरी हुई है। उसने जो संघर्ष किया उसको देखो, उसको मानो, उसको जानो, उसको टटोलो, आपका भी उत्कर्ष होगा, आपका भी अभ्युदय होगा। आपकी आंखों में ईर्ष्या की वजह क्या है, आप खुद नहीं कर पाए, न कर सकते हो। अरे आपका बेटा फेल हुआ तो उसके लिए पड़ोसी का बेटा थोड़ा जिम्मेवार है, पड़ोसी का बेटा है वो बोर्ड में पहले 10 नंबर में आया है तो वहां 1 किलो पेड़ा लेकर के जाना, खुशी बना। आपका बेटा पास हुआ है ना, वो मेरा ही बेटा पास हुआ, मुझे खुशी है इसकी, किंतु हमसे होता नहीं है। दादा आप क्यों दुखी हो, मेरा पड़ोसी सुखी है इसलिए मैं दुखी हूं। हमारे जीवन की ये जो कितनी कठिनाई है कि आंखों में दोष ही भरा हुआ है। अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान विज्ञान सहितम, क्योंकि तुम दोष दृष्टि के रहित हो गए हो। ये गोपनीय ज्ञान है, ये ज्ञान जो है वो इतना हितकारी है ऐसा मानना जरूरी नहीं है। ज्ञान के साथ में विज्ञान होना चाहिए, जो विज्ञान होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ग्रैस्पिंग एंड डाइजेस्टिंग, तीन बात है। क्या कहा है, ये तुम जान करके सुन करके नहीं कहा है। ज्ञान तो हुआ है, क्या हुआ, ज्ञान से हिरोशिमा हुआ है, नागाशिका हुआ है, यही तो ज्ञान है। अभी तक भी वहां लोग तड़प रहे जापान में, ये ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। जिन लोगों ने इन अणु विज्ञान को बनाया, आइंस्टाइन को पूछ लो आप, सापेक्षवाद वाले को, क्या फॉर्मूला तुमने बनाया था, पूछो उसको, और उसको पूछो अपने जीवन में क्या तुम सुख से सो सकते हो क्या। जो ज्ञान पहले होता था वो केवल था, गुह्य था। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास शिष्यम तम त्रोटकम वार्धिक कारमन्या। गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, ऐसे ग्रंथों में नहीं था, इसलिए गोपनीय था, इसलिए अधिकारियों को मिलता था, अनधिकारी को नहीं मिलता था। अधिकारी को मिलने से वो ज्ञान विज्ञान के साथ में संतुलित था। अभी सबके लिए सहज हो गया। हर कोई आदमी अपने घर में बॉम्ब बना सकता है, कहीं पर भी जाकर के बॉम्ब फेंक सकता है, क्योंकि उसके पास में केवल कोरा ज्ञान है, विज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है। ये ज्ञान और विज्ञान को समझने के लिए अपने अंतस्थल में जाना पड़ेगा। सीएनएन ने हमसे एक दिन पूछा, महाराज आप इस विदेश की धरती में आते हो, कभी आपको सफोकेशन नहीं होता है? हमने उनसे कहा सफोकेशन क्यों हो? उन्होंने कहा कि ये हिंदू लोग हैं, अपनी पराई धरती पर आए हैं, तो अपने हिंदुत्व को जैसे चाहे ऐसे संभाल ना पाए। मैंने कहा देखो भाई, हमारे यहां बोलते हैं कुएं में हो ऐसा ही बार अवाड़े में हैंडपंप में पानी आता है, सफोकेशन आपको हो रहा है, नहीं तो आप ऐसे प्रश्न पूछते नहीं थे, ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने कहा देखिए आपके तमाम चर्च बिक्री में है, चर्च बिक रहे हैं और चर्च वो खरीद रहे हैं हिंदू लोग, वहां सनातन धर्म के मंदिर बन रहे हैं, वहां पर गायत्री मंदिर बन रहे हैं, वहां स्वामीनारायण मंदिर बन रहे हैं, चर्च बिक रहे हैं और हिंदू धर्म बढ़ रहा है। नहीं 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 निजामे जी, ऐसी बात नहीं है, हम ये कहते हैं हमारे जो चर्च है उसमें कितनी शांति होती है, आपके मंदिरों में इतना कोलाहल क्यों होता है? हमने कहा मंदिर में कोलाहल होता नहीं है। अरे हमेशा हंगामा होता रहता है। मैंने कहा देखो भाई, वो संगीत होता है, नृत्य होता है। अरे क्या संगीत नृत्य, हमारे चर्च देखो कैसे शांत है। मैंने कहा तुम्हारे चर्च के अंदर में पहले बात अपने आप को सोचो, हमारे कृष्ण बंसी बजाते हैं, हमारे ये नारद जी वीणा बजाते हैं, शिव जी डमरू बजाते हैं, तमाम देवी देवताओं का एक एक वाजिंत्र है। और संगीत और नृत्य कब होता है? जब आनंद हो, पुलकित हो, मस्ती हो, तब तो संगीत होता है, तब तो नृत्य होता है। तुमने तो क्या किया है, अपने भगवान को हाथ में पांव में कील ठोके रखा है, छाती में कील ठोके रख दिया, सिर में कोल्ठी, उस कीलों को निकालो, सिर के ऊपर में कांटा रखा है उसको निकालो, हमारे कन्हैया जैसा पीला पीताम्बर पहनाओ, फिर तो मलम पट्टी करो उसको ठीक करो, बाद में कन्हैया जैसे पीला पीताम्बर पहनाओ, गले में वैजंती माला पहनाओ, कान में कुंडल पहनाओ, सिर के ऊपर कांटों का ताज निकाल के मोर मुकुट रखो, कहीं राधा ढूंढती हुई छलिया को वहां आपके जीसस के पास भी चली जाएगी, एक बार जीसस को मुक्त तो करो तुम लोग। हमने अपने ज्ञान को अपने ढंग से सोचते हैं, हम अपने ज्ञान को अपने ढंग से ही विचार करते हैं, और उस ज्ञान के अंदर में विज्ञान नहीं है, प्रश्न प्रश्न के जैसे रह जाते हैं, क्योंकि दोष की दृष्टि भरी हुई है। हमारा ब्रह्म सर्वत्र है। लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर हैं कि उनके अधिकृत जो अधिष्ठाता रहे, उनको उन दिनों की जो मुख्यमंत्री बड़ी परेशान कर रही थी, तो वहां उस कुर्सी में कोई बैठना ही नहीं चाहता। दो तीन अधिकारी आकर के चले गए तो लोगों ने वहां हनुमान जी की छवि बैठा दी, आपने भी सुना पड़ा होगा, हनुमान जी की छवि पड़ा दी तो वहां रोज आरती हो रही है, सुबह लोग आकर के स्टाफ वाले प्रोफेसर लोग आरती करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो तीन दिन चार दिन में अखबारों में आ गया, अब तो टीवी में भी आ गया। टीवी ने हमको बुला दिया, स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हैं? पहले दिल्ली से बंबई से दो चार लोगों ने हमसे इंटरव्यू किया और बाद में कहा स्वामी जी आप कहिए आप क्या करना। हमने कहा क्या बुरी बात है, अरे क्या क्या बुरी बात है, इतनी बड़ी संस्था के अंदर में कोई व्यक्ति ना बैठे और हनुमान जी की छवि। उनका हनुमान जी के लिए क्या असंभव है, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांदी गए अचरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, और रावण की लंका को जला सकते, रावण को टरना सकते, तो इतनी छोटी मच्छर जैसी संस्था चलाना हनुमान जी के लिए ऐसा कुछ छोटा काम है? नहीं नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि ये हमारे यहां नहीं, ये विदेश के लोग हैं, अपने जो चप्पल है उसमें राम राम लिख देते हैं। मैंने कहा अरे तो अच्छा काम करते हैं। अमेरिका का कोई शहर नहीं जहां पर रामडा नहीं हो, हर गांव के अंदर में एक राम के द्वारा दी हुई रामदा, राम के द्वारा प्रदत्त इसी होटल की नाम है। और दूसरा, जब राम को खुद को भी जब लंका जाना था सेतु बंद पर, तो पत्थर पर राम राम करके लिखे गए थे, तो इनको अमेरिका वालों को चप्पल में राम लिखी तो क्या बुरी बात है भाई? अरे नहीं, उन्होंने टॉयलेट पेपर में लिखा है हनुमान का नाम। मैंने कहा देखो भाई सुनो, हनुमान पवन पुत्र है, वो हनुमान करुणा निधान है, राम भी करुणा निधान है, वो सबरी क्या भी जा सकते हैं, केवट क्या जा सकते हैं, अगर टॉयलेट करने की अमेरिका वालों को तकलीफ है तो राम वहां भी जाके भी हमारे राम तो करुणा, क्योंकि उनके अपने भगवान से नहीं बनता है गुजारा, तभी तो राम का सहारा ले सकते भाई। तुम क्यों अपने आप को झल्लाते हो, तुम क्यों अपने आप को दोष देखते रहते हो, तुम क्यों अपने आप को दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। उठाओ संगच्छत्वम संवधत्वम समनो मनाम सी जानताम सहना अववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवा वही। विदेश की पाश्चात्य की जो गतिमती है वह केवल बहुधिक है, वह पाप के ऊपर बनी हुई है। तुम पापी हो, तुम्हारा कल्याण और कोई नहीं कर सकता है। नहीं, हमारे यहां की जो हमारी आर्ष संस्कृति है वो कहती है कि नहीं, अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम पाप के पुत्र नहीं हो। किंतु ध्यान रखें कि हम जो कुछ कर रहे हैं उनको हमें जानना है, केवल सुनना नहीं। अपने गुरु में, अपने इष्ट में, अपने मंत्र में, अपने प्रचारक में, अपने नायक में हमें श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है। ये श्रद्धा जो है कृष्ण कहते हैं वो बहुत जरूरी बात है। क्यों? श्री श्री चैतन्य कहते हैं यदि आमार गुरु शुराबाड़ी ते जाए ताऊ आमार गुरु जदुमणि राय। यदि मेरे गुरु शराब के ठेके में गए तब भी मेरे गुरु वो वहां पर भी किसको मंत्र दीक्षा देने, किसका कल्याण करने के लिए ही गए होंगे। अपने गुरु में अनन्य श्रद्धा रखो, अनन्य निष्ठा रखो, अनन्य विश्वास रखो। ये अनन्य बहुत जरूरी बात है, जो विचलित नहीं है, स्थिर है। न अन्य अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां, वो क्या कहा, अभियुक्तानां योगक्षेमम। योगक्षेम कब आएगा? जब अनन्य हो जाएंगे, पूरी श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो, पूरी निष्ठा हो। ध्यान रखे, सुनकर नहीं, वो इतना इफेक्टिवली होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जानकर, ये केवल सुनकर के नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि तू जान लेगा तो दुख से मुक्त हो जाएगा। क्या जान लेगा? ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तुम ज्ञान को विज्ञान के सहित, रहस्य के साथ में, क्योंकि ये राजविद्या है। देखिए, साधन करने के लिए कृष्ण कहते हैं ये बड़ा सुगम है, यह अविनाशी है, क्योंकि कृष्ण ने जो ज्ञान प्रदान किया है वह सनातन ज्ञान है, था है रहेगा, वो टेम्पररी नहीं है। वो देखिए, मोहम्मद साहब हैं तो मोहम्मद साहब के बारे में हम कहेंगे तो कितने साल हो गए भाई कुरान शरीफ को, तो बोलेंगे कि भाई 3000 साल हो गए कि 2500 साल हो गए। तो ईसा मसीह साहब को कितना साल हो गए भाई, तो बोले अब तो 2012 चल रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज को कितना सा हो गया है, 500 सवा 500 गए हैं। अच्छा, स्वामी दयानंद जी महाराज को कितना हो गया है, 150-200 साल हो गए हैं। अच्छा, हमको बताओ भाई वेदों को कितना साल हो गया है, अपौरुष है वेदा। क्या बात है, जो थे रहेंगे। कृष्ण को आप 5000 साल बोल सकते हो, श्री राम को 10000 साल बोल रहे हो, अरे शिव को बोलो कितना साल हो गया भाई। हाँ, वो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसको तुलना नहीं कर सकते। जो पहले थे, अब हैं और भविष्य में रहेंगे, तो उनको आप पिष्ट पेषण करके, क्योंकि आप चाहते हो कि हर चीज को हम अपनी लेबोरेटरी के ट्यूब में डालें, क्योंकि आपकी लेबोरेटरी की ट्यूब जो है वो अध्यात्म की लेबोरेटरी की ट्यूब पृथक है। वहां भी है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, योग चित्तवृत्ति निरोधक है, एक तो करके तो देख लो, तो स्थिर तो बैठना सीखो, थोड़ी देर के लिए तो बैठ जा। स्थिर क्या बैठना है, शरीर को स्थिर नहीं रख रहा है, मन में कोई विचार नहीं। एक बाबा जी मुझसे पूछते रहे, तुम ध्यान करते हो, तो 103 साल की उम्र रही। हमने कहा जी महाराज जी, रोज लगता है, कभी कभी लगता है। कितना देर तक? कभी एक, कभी 2 मिनट, 1.5 मिनट। तेरा 1.5 मिनट 2 मिनट ध्यान लगता है? उठ के उन्होंने हमको गले लगा लिया, यहां से चूमने लगे। हम समझते हम 3 घंटा रोज बैठ जाते, क्या करते, शरीर से तो बैठ जाते, मन कहां रहता है। मन को छोड़ो, मन को मत पकड़ो, मन के सामने देखो ही नहीं, मन से परे हो जाओ, उसके अंदर नहीं जाना है। मन को मन से परे होना है, मन से पृथक होना है, चित्त का चिंतन नहीं करना है, बुद्धि अहंकार से परे, मैं देह नहीं हूं। तभी जाकर के पुनः पुनः जब चिंतन होगा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो वो हो जाएगा। जैसे मन की गति होगी, विचार की गति होगी, वही हमारे जीवन की गति होगी, वही आत्मा के प्रति हमारी गति होगी। और वो क्या है, जहां मन नहीं रहेगा तब। एक राजा है, उनको पक्षियों की बड़ी बोलियां आती है, पशु की बोली भी जानते हैं, और वो पशु और पक्षी की बोली इतना बोल लेते, जंगल में जाएंगे रोज शाम होते होते जाएंगे, वहां शेर हाथी भालू जिराफ तमाम लोग मिल जाएंगे, वहां पर राजा से बात करेंगे, राजा वापस आ जाएंगे। एक दिन की बात, वहां एक चिड़िया आई है, उसके सोने के पर थे, इतना प्यार से बोल रही है, राजा को बड़ी प्यारी लगी है चिड़िया, ये बड़ी परिंदी। राजा ने लोगों से कहा, क्या चिड़िया को हम महल लेके जाएं? लोगों ने कहा, चिड़िया को पूछ लो। हाँ मैं चलती हूं, चिड़िया कूद करके राजा के कंधे पर बैठ गई। राजा बड़े प्रसन्न, लोग बड़े प्रसन्न। राजा ने अपने महल में ला करके एक बहुत बड़ा खंड, जैसा ये भवन हमारा बना हुआ है, तीसरा माला, बहुत सारे पेड़ लगाए उसके अंदर में, एक सुंदर पिंजरा बनाया सोने का, उसमें हीरे के मोती के झूले लगाए, उसमें चिड़िया को बैठाया। कटोरियां सोने की है, हीरा लगा हुआ है, मोती लगा हुआ है, पन्ना है, पोखरा जे नीलम में माने के, खाने पीने के लिए बहुत सुविधा है। चिड़िया के पास में राजा बैठता है, सुबह दोपहर शाम रात त्रिकाल संध्या के माफिक। अब राजा ने जंगल में जाना बंद कर दिया, किंतु एक महीना बीतते बीतते राजा को लगा कि मुझे जंगल भी तो जाना चाहिए, मेरे और प्राणी लोग भी तो दोस्त है। चिड़िया से पूछा, मैं जंगल जा रहा हूं, तुम कुछ कहना चाहती हो? बोले, बोलना। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा कमरा, एयर कंडीशन लगा हुआ है, राजू वहां बैठ करके कंट्रोल करता है। हाँ, सब सुंदर, एयर कंडीशन, रंगीन बातें, रंगीन कहानियां, रंगीन सत्संग, उसमें सोने का पिंजड़ा है और हीरे के झूले लगे हुए हैं और चांदी की कटोरियां लगी हुई हैं, उसके अंदर में ये मणि पोखराज नीलम लगे हुए हैं, इसके अंदर में मेरे को आनंद है बोल देना। राजा गए जंगल में, शेर को भालू को हाथी को जिराफ को सबसे बात करके प्रसन्न। अरे आप लोग वो हमारी वो चिड़िया के बारे में, हाँ कैसी है कैसी है, क्या कहा? उसने कहा कि मैं बड़ी खुश हूं, बहुत बड़ा एक हॉल कमरा है, एयर कंडीशन है, वहां पर उठने बैठने के लिए बड़ी सुविधा है, एक सोने का बड़ा पिंजरा है, उसमें हीरा का झूला है, वो चांदी की कटोरियों में सब लगा हुआ है। तो ये सुनते सुनते हाथी झूल करके गिर गया, पता नहीं क्या हो गया, हाथी को देख के शेर भी गिर गया, जिराफ गिर गया, भालू गिर गया, एक एक ऐसे गिर रहे हैं जैसे पके आम गिर रहे हो पेड़ से। राजा ने उनको टटोला, निष्प्राण है, निष्पंद है, चेतना शून्य। अरे छोटी चिड़िया, तुमने क्या यह संदेश भेजा, तुमने क्या भेजा जो निष्प्राण हो गए, ये लोग निश्चेतन हो गए, जिनमें बेजान हो गए, चेतना नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, क्या बात क्या है? राजा बहुत दुखी थे, सबको हिला हिला करके देखा, हृदय में एक बोझ लेकर के, मन में एक ग्लानी भर के, आंखों में अश्रू भर करके आए, चिड़िया से कहा, तूने क्या कहा था? चिड़िया बोले, क्या हुआ? तेरा संदेशा मैंने सुना दिया, संदेशा जब मैंने सुना दिया तो देखा वहां पर हाथी गिर गया, पीछे शेर भी गिर गया, बोलते बोलते राजा के कंठ भी भर गया, किंतु ये सुनते सुनते चिड़िया भी गिर गई। राजा ने टटोला, चिड़िया भी निष्प्राण है, निष्पन्न है, राजा अपना सिर थाम करके बैठे हुए हैं, क्या हो गया, मैंने क्या पाप किया है, इतने सारे प्राणी मेरे सामने, मेरी प्यारी चिड़िया, सोने की पंख वाली, फुदकने वाली, गाने वाली, चहकने वाली, आत्मकिल्लोल करने वाली। राजा ने गुरुजनों को बुलाया, एक सोने के थाल में, स्वर्ण के वस्त्र में उस चिड़िया के देह को रखा और बगीचे में एक गड्ढा खोदा गया, वहां पर उसको दफनाने के पहले उस पर अभिषेक किया गया, सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्रासन, जैसे पानी छिड़का वो चिड़िया उड़ गई। राजा बोले, क्या हो गया? बोले, ये तो संदेश भेजा था। क्या संदेश भेजा था? बोला, मुक्ति होने के लिए मरना पड़ेगा, जो मुक्त होना चाहता है उसको मरना पड़ेगा। मरना क्या है? अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा, देह को छोड़ना पड़ेगा, दोष की दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, शुद्ध को प्राप्त होना पड़ेगा। मैं देह नहीं हूं, मैं गेह नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न श्रोत्र जीवे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजस च वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान बड़ा सुगम है, ये बड़ा सरल है। कहते हैं कि ये इतना सुगम है, इतना सरल है, कल आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेश भाई कह रहे थे कि महेश योगी कहते हैं कि हमारे यहाँ एक लकड़ी के माफक, वो मुरारजी भाई की लाठी कहा था, उसके माफक यहाँ से एक रिंग डालो ऊपर तक चले जाओ, 5 मिनट करो, कुछ भी बात नहीं है। होता है, टेम्पररी तो होता है, उसमें कोई शंका नहीं है, शांति तो होती ही है। वो मंत्र देते रहे, हमने अपने दोस्त की बिटिया है, वो कहती स्वामी जी आज हमसे 150-150 रुपए लिए गए और हमको एक एक मंत्र दिया गया। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए अहमदाबाद की किसी स्कूल में क्या मंत्र दिया, बोले इंगा दिया है मंत्र। क्या होता है इंगा, बोले कुछ भी मंत्र बोलो, इंगा बोलो, चिंगा बोलो, टिंगा बोलो, कुछ बोलो, कृष्ण वासुदेव बोलने की कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां से एक रिंग लेकर के नीचे जा। होता है, कम से कम स्थिर बैठना तो सीखे आपके नहीं। और मन को एक यहां से यहां तक जो चारों ओर भाग रहा था, एक बंदर बहुत दूर तक कूदता है, बंदर बहुत दूर तक कूदता रहा, रस्सी से बांध लो, खूंटे से बांध लो, तो उसको कूदना तो रहेगा, किंतु वो खूंटे और रस्सी कितनी लंबी है उससे ज्यादा नहीं कूद सकता है। इसलिए उस लाठी में, जिसको हम यहां से कहते हैं पिट्यूटरी से, पीनियल से लेकर के और सेरिब्रम सेरिबलम से, हम अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक लेकर चले जाएं, तो हमारी दौड़ भाग जो है वो तो बनी रहेगी, किंतु वो सीमित हो जाएगी। पहले दूर तक बंदर कूदता था, अब बंद गया है, मन दूर तक था, तो उसका लाभ तो है, किंतु वह लाभ में सातत्य कहां है? लाभ में सातत्य देखने के लिए कृष्ण कहते हैं साधन बड़ा सुगम है, वो उतना सुगम नहीं है, 8 अध्यायों के नींव पर चलना पड़ेगा, अध्यात्म को जानना पड़ेगा, ब्रह्म को जानना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, फिर वह अधियज्ञ हो, अधिभूत हो, अधिदैव हो, इनकी नींव अगर होगी तब जाकर के वो थोड़ा सुगम होगा। जब नींव ही नहीं है आपके जीवन की, सुगम नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। हम क्या कहते हैं कि कोई आदमी हमारे पास में तमिल बोलता है, वो बोल तो रहा है, हम सुन भी रहे हैं, समझे क्या? दूसरा कोई आदमी है वो पर्शियन बोल रहा है, चीनी बोल रहा है, वो बोल तो रहा है, हम सुन भी रहे हैं, समझे क्या? हम कुछ भी कर रहे हैं, वो बोलना एक होता है, सुनना एक होता है, समझना तीसरा होता है। अपने जीवन की इस वस्तु विषय की स्थिति में क्या कहा, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम, ये परम तत्व की अनुभूति सरल कब हो सकती है कि जबकि साधन करने में, अविनाशी की प्राप्त करने में, अति उत्तम में जाने में, प्रत्यक्ष फल देने में एक श्रद्धा हो हमारी, एक विश्वास हो हमारा, तब जाकर के वो मृत्यु संसार से हमारे जो आवागमन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम है, उसे मुक्ति असंभव नहीं है। तो क्या करें, यही कहा, ध्यान रहे, श्रद्धा को ना भूले, सबसे बड़ी बात है। जिसके पास में आपने शरणागति स्वीकार की है, आपके गुरु हैं, गुरु मंत्र हैं, ईश्वर हैं, इसमें आपकी संपूर्ण शरणागति हो। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि वो गुरु के दरवाजे पर एक डोरमेट, एक पायदान, पगलुछणियु होकर के बैठ जाओ, रीझे तो रीझाओ गुरु को, रीझे तो रीझाओ गुरु को, रीझे तो रीझाओ गुरु, नहीं माने तो गुण नहीं आवे, गुरु नहीं माने तो गुण नहीं आवे, गुनियन में बे गुनी कहावे, रिझे तो रिझाओ गुरु को रिझाओ। गुरु की आवश्यकता है, कब तक है? जो ऊंची कूद करता है ना, एक लंबा बांस लेके दौड़ता है, ऐसे करके दौड़ करके वो जो रस्सी है उसके पास में बांह नीचे डालता है, डालने के बाद में वो रस्सी के ऊपर चला जाता है, ये रस्सी के ऊपर वो कूद जाता है, तब वो बांस छोड़ देता है, फिर वो बांस लेकर के नहीं जाता है। गुरु की कब तक आवश्यकता होगी? बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आदरणीय नरेश भाई बोल रहे थे बहुत सुंदर बात, क्या कहा, कबीर का कहा कि भाई हमारे सुई के नोक में ऊंट चला जाएगा, किंतु धनवान नहीं जा सकता है, पैसे वाला नहीं जा सकता है, अपने अहं को लेकर के हम गुरु के पास गए तो गुजरा नहीं होगा, हमको तो छोड़ना पड़ेगा। तव दासो हम दासो हम तव दास थे, भृत्यस्य मैं तुम्हारे दास के दास का दास हूं, मैं तुम्हारे किंकर का किंकर हूं। जब मेरे में कोई दृष्टि नहीं रह जाएगी, आई एम दाइन, दाउ आर्ट माइन, दाय विल बी डन, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप जो कहो सोई हो, ये भाव हो जाएगा तब श्रद्धा बनेगी। आगे बात कल प्रातः काल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।